भारतेंदु युगीन हिंदी कविता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही हिंदुस्तान के शिक्षित उच्च एवं मध्य वर्ग में ऐसे नए विचारों का प्रभाव दिखाई देने लगा था जिसमें एक ओर संयत आधुनिकता थी तो दूसरी ओर भारतीयता पर बल। इसी समय सामंतवादी मूल्यों, जीवनचर्या और सामाजिकता से मुठभेड़ शुरू हुई। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी सामंतवादी व्यवस्था का प्रतिबिंबन करने वाले रीतिकालीन मूल्यों से वैचारिक एवं रचनात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ। नायक नायिका भेद, एकांगी श्रृंगारिकता और सामान्य जनजीवन से अलगाव पर आक्षेप किया जाने लगा। ऐसे रचनात्मक साहित्य को बल मिला जो एक ओर सामान्य जन के चित्रण में रुचि रखता था तो दूसरी ओर सामान्य जन की भाषा को रचना भाषा के रूप में स्वीकार करता था। भारतेंदु मंडल के लेखकों के पूर्व ही फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी लल्लू लाल व सदल मिश्र ने खड़ी बोली के प्रयोग पर बल दिया। भाषिक विविधता वाले महादेश भारत में अंग्रेज अंग्रेजी और फारसी के अतिरिक्त एक ऐसी देशी भाषा चाहते थे जिसे वे महादेश के सामान्य नागरिकों से विचार विमर्श के लिए संपर्क भाषा के रूप में अपना सके। सदा सुखलाल नियाज व ईशा अल्लाह खान ने खड़ी बोली में गद्य लिखकर लेखकों के समक्ष एक आसान रास्ता रखा। इस तरह इन चार गद्यकारों के समन्वित प्रयास से खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में विकसित होने लगी। कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में उदंत मार्टंड नाम का हिंदी का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने वाराणसी से बनारस अखबार तथा 1860 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रज्ञा हितैषी समाचार पत्र प्रकाशित कर खड़ी बोली के गद्य रूप को जन स्वीकृति दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। खड़ी बोली का स्वरूप स्थिर न था। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की भाषा में उर्दू फारसी का बहिष्कार, बजरी और पूर्वी हिंदी का प्रभावशाली उपयोग है। इससे संस्कृत निष्ठ भाषा का पंडिताऊ रूप उभरता है। सदा सुखलाल नियाज, ईशा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आदि की भाषा में हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू के प्रभावशाली उपयोग की झलक है। यह शिष्ट नागरजनों के व्यवहार में आने की योग्यता रखने वाली भाषा थी। इस तरह धीरे धीरे आम फहम हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं देशज बोलियों के शब्दों से परहेज न रखने वाली खड़ी बोली हिंदी के रूप में विकसित होने लगी। देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकृति मिली। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों ने हिंदी में हरिश्चंद मैगजीन, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण जैसे पत्र पत्रिकाओं में विशेषतः निबंधों के माध्यम से एक ओर खड़ी बोली के विक्षणशील गद्य रूप को आगे बढ़ाया तो दूसरी ओर रीतिकालीन मानसिकता और प्रवृत्तियों का रचनात्मक विरोध किया। छिछली श्रृंगारिकता, कामुक खिदड़ापन, नायक नायकों का उच्छृंखल कायिक वर्णन इनका विरोध किया। उन्होंने एक ओर देश की सामाजिक आर्थिक दशा पर गहराई से विचार किया एवं अंग्रेजों के शोषण का कच्चा चिट्ठा खोला, वहीं दूसरी ओर समाज के भीतर फैली कुरीतियों, पाखंड, ऊंच नीच, सामाजिक आर्थिक विषमता इत्यादि का व्यंगात्मक लहजे में वर्णन किया। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने स्वदेश, स्वभाषा, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, सांप्रदायिकता, सद्भाव, अस्पृश्यता, अशिक्षा आदि पर सच्ची करुणा और सहानुभूति से उत्प्रेरित लेखन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे नए युग के प्रवर्तक हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि इन लेखकों ने काव्य को दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे हिंदी के नवजागरण की संज्ञा देते हुए जनवादी साहित्य माना। उनके अनुसार भारतेंदु युग का साहित्यिक जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने जमाने से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे बल्कि वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। भारतेंदु युगीन प्रमुख रचनाकार जहां गद्य में खड़ी बोली का रचनात्मक प्रयोग कर रहे थे, वहीं काव्य भाषा ब्रज ही बनी रही। ब्रज भाषा के पुराने काव्य अर्थात भक्ति युगीन और रीति युगीन मानसिकता का प्रभाव इस तरह सहज व स्वाभाविक था। आशय यह है कि भारतेंदु युगीन कवि युगानुकूल नई रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए जहां एक ओर ब्रज की प्राचीन परंपरा से रचनात्मक संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गद्य में वे खड़ी बोली में सहज ही नवीन रचनात्मक प्रस्ताव को विकसित होता देख रहे थे। ये कवि इस अर्थ में भी रीतियुगीन कवियों से भिन्न है कि वे अपने तत्कालीन समाज का चित्रण कविता में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारतेंदु युगीन कवि सामंती संस्कृति व धार्मिक रूढ़िवाद से उत्पन्न विकृतियों तथा अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण और शिक्षित नागर भारतीय जन की निरपेक्ष भावना पर व्यंग करते थे। कविता में उनका लक्ष्य स्वदेश, स्वभाषा, देश प्रेम की भावना और तत्कालीन जनजीवन का बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करना रहा है। अपने काव्य विषयों के अभिव्यक्ति के लिए इन कवियों ने अनेक काव्य रूपों और छंदों का प्रयोग किया। विशुद्ध लोक गीतों से लेकर गजलों और पदों तक में काव्य प्रयोग इस युग की प्रमुख विशेषता है। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों पर भारतीय इंदो युगीन कवियों ने जहां एक और सपाट तथा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर व्यंग का भी प्रयोग किया। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति खुआरी। भीतर भीतर सब रच्चू से हसी हसी के, तन मन धन मुँह से जाहिर बातन में अति तेज, को सके नहीं अंग्रेज। भारतेंदु युगीन कवियों में साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, शोषण तंत्र के दीर्घगामी प्रभाव पर सटीक और मार्मिक टिप्पणियां मिलती हैं। औपनिवेशिक शोषण के अमानवीय एवं क्रूर रूप से ये कवि अत्यंत मर्माहत थे। प्रतापनाथ मिश्र की एक कविता उदाहरण स्वरूप देखी जा सकती है, सर्वस लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर में तेज। अपने तत्कालीन समाज एवं गंभीर टिप्पणियां भी इन कवियों ने की है। नव शिक्षित अंग्रेजिता बाबू वर्ग पर व्यंग्यात्मक लहजे से आक्षेप इस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है। अंधेर नगरी नाटक में चूरन वाले के गीत में इन अंग्रेज परस्तों पर कठोर टिप्पणियां हैं। प्रतापनाथ मिश्र की एक कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र जोए, मिटे बदन पर श्याम रंग, जन्म सफल तब होए। उपनिवेशवादी विदेशी शक्तियों तथा उनके प्रभावों से विकसित हो रहे नव बाबू वर्ग पर यह कठोर टिप्पणी है। भारतेंदु युगीन कवियों के मन में पुराने भारतीय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ते के अनुसार इस काल के कवि पुराने सामाजिक ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें परिवर्तन चाहते थे। राजनीतिक स्वाधीनता का मंद स्वर भी कहीं कहीं उनके काव्य में मुखर है। आर्थिक शोषण के प्रति उनके मन में तीव्र आक्रोश है तो समाज सुधार लाने की तीव्र आकांक्षा भी है। भारतेंदु युगीन कवि देश प्रेम की भावना को जगह जगह अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं। देश से उनका आशय स्पष्ट है कि देशवासियों संस्कृति, भाषा, प्रकृति इत्यादि से है। भारतेंदु युगीन कवियों की स्पष्ट मान्यता है कि स्वदेशी भाषा के माध्यम से ही देश का विकास किया जा सकता है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु की वाणी में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही। बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी जिनमें कहीं देश की अतीव गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की शोक भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जागी हुई चिंता आदि अनेक उन्नत भावों का संचार पाया जाता है। देश प्रेम की यह भावना इस युग के कवियों की उन कविताओं में भी दिखाई पड़ती है जो देशवासियों के अविवेकपूर्ण अंधविश्वासों, रूढ़ियों, जाति धर्म में बटे होने, छुआछूत, विधवा विवाह विरोध, बाल विवाह प्रथा और झूठा नंबर ओढ़ने के प्रति व्यंग्यात्मक लहजे में लिखी गई हैं। इन कवियों की चेतना एक और नवजागरण के नेताओं राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों और चिंतकों के विचारों से प्रभावित थी, तो दूसरी ओर विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था में कार्यरत समाज सुधार की शक्तियों से भारतेंदु की मुकरियां तथा प्रतापनाथ मिश्र की कविताओं में इसके अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। कबीर आदि कवियों की तरह भारतेंदु ने सामाजिक धार्मिक आडंबरों का कड़ाई से विरोध किया। वैश्व लोग कहा वही कंठी मुद्राधारी, छिप छिप के मंदिरा पी या जी माझ विचारी। समाज के विकास की रीढ़ कही जाने वाले युवा वर्ग पर उनकी टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गड़ी अंग रखन माँ को खोसे टिहुना, छड़ी धरे कोई जवान, भरी भरी चुटकी सुगनी सुगे, कौ को चरचर चाबे पान। भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य भाषा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए जिनका प्रमुख लक्ष्य भाषा को रीतिकालीन आडंबरों, जीवनहीन कलात्मकता और अलंकार प्रियता से मुक्ति दिलाते हुए सामान्य जन की भाषा में सहज जीवन की सहज कविता बनाने का था। इन कवियों की काव्य भाषा प्रमुख रूप से ब्रज की ही रही, परंतु खड़ी बोली में भी उन्होंने छीटपुट काव्य प्रयोग किए। ब्रज में कविता लिखते हुए उन्होंने खड़ी बोली, उर्दू तथा हिंदी की अन्य बोलियों के शब्दों को स्वीकार किया। इन कवियों ने जहां एक और काव्य विषयों को सामंतों अभिजनों की हवेलियों से बाहर निकाला, वहीं दूसरी ओर कविता की भाषा को भी हवेलियों से बाहर निकालकर सामान्य जन तक ले गए। वे वस्तुतः कबीर और नजीर अकबराबादी की परंपरा का विकास कर रहे थे। भारतीय युगीन कवियों ने अपनी कविताओं में अनेक काव्य रूपों का प्रयोग किया। इनकी रुचि प्रायः प्रबंध काव्यों में न थी और इन्होंने लोक और शास्त्रीय ऐसे काव्य रूप चुने जिन्हें सामान्यतः मुत्तक या गीति कहा जा सकता है। उन्होंने साधारण जनता में लोकप्रिय पारंपरिक लोक रूपों भाग हौरी पहेलियां मुकरियां आदि का भरपूर प्रयोग किया। भारतेंदु के अनुसार ऐसे गीत बहुत छोटे छोटे छंदों और साधारण भाषा में बने। वरंच गवारी व स्त्रियों की भाषा में विशेषता कजरी ठुमरी खेमड़ा कहरवा अधगा चैती हौरी सांझी लंबे लावनी विरहा चनैनी गजल इत्यादि ग्राम गीतों में उनका प्रचार हो। इन कवियों ने मध्यकाल में प्रचलित पद शैली तथा दोहा जैसे छंदों का भी भरपूर प्रयोग किया। ये कवि प्रमुखता ऐसे काव्य रूप और भाषा चुनते हैं जिससे उनकी रचनाओं की विषय वस्तु बेहद आसानी से सामान्य जन तथा मनोरंजक शैली में पहुँच सके। भारतेंदु युगीन कवि भारत देश में सबसे अधिक पिछड़े माने गए हिंदी क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश द्वार बन सके। इन कवियों ने एक और रीति युगीन रचना परंपरा से मुठभेड़ कर दरबारी सामंती मनोवृत्ति पर अंकुश लगाया तो दूसरी ओर कविता में श्रृंगार और भक्ति जैसे विषयों से इतर सामान्य विषयों और जनजीवन तक गए। उन्होंने देश के परिदृश्य पर पूर्णता हावी हो चुकी साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी ताकतों के विरुद्ध खड़े होकर उनके शोषक रूप को बेनकाब करने के साथ ही देश प्रेम की भावना का भी संचार किया। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के अनुसार इस काल की हिंदी कविता इस अर्थ में जन्मवादी एवं मानवतावादी है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार और परिवर्तन चाहती है। वह राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ मनुष्य की एकता समानता और भाईचारे की भावना को बल देती है। उनका स्वर दैवी कम मानवी अधिक है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता के स्वर क्षीण होने लगे हैं और उनके स्थान पर भौतिक जीवन और दैनंदिन समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वे सामंती परिवेश में के दम घोटू वातावरण से मुक्त होकर खुली हवा में सांस लेने का प्रयास कर रही हैं।